कुछ दिन वापस अव्यक्त वाणी करेंगे। तो हम थे 25, जनवरी 94, ग्रुप नंबर 2। अपने को सदा बाप के वर्षे के अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी और साथ साथ विश्व के राज्य अधिकारी अनुभव करते हो, क्योंकि बाप का वर्षा ही है स्वराज्य और विश्व का राज्य। तो बाप के वर्षे के अधिकारी अर्थात स्वराज्य और विश्व के राज्य अधिकारी, यह विश्व आपके हस्तों पर आएगा। अभी तो अनेकों के हाथ में है, इसलिए विश्व भी हलचल में है, कभी यहाँ लुढ़कता है कभी वहां लुढ़कता है। जब आपके हाथ में आ जाएगा तो हलचल खत्म, एक रस रहेगा। याद आता है विश्व पर कितनी बार राज्य किया है, अनेक बार किया है, यह अनुभव होता है बुद्धि के कैमरा में, अपने राज्य का चित्र स्पष्ट आता है। या बाप कहता है तो जरूर होगा, ऐसा ही स्पष्ट है जैसे वर्तमान स्पष्ट है, क्योंकि कल ही की तो बात है, कल था कल आने वाला है, आज स्वराज्य कल विश्व का राज्य, आज कल की बात है ना। तो अधिकारी आत्मा सदा सदा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। स्थूल नशा सब कुछ भुला देता है ना, वह है अल्पकाल का और यह है सदाकाल का। जब अधिकार का नशा रहता है तो नई दुनिया के आगे यह पुरानी दुनिया क्या लगती है? कुछ भी नहीं। पुरानी दुनिया को भूलना मुश्किल नहीं लगता। अधिकारी कभी अधीन नहीं होता, कोई भी बात के अधीन नहीं। जहाँ अधिकार है वहां अधीनता नहीं, और जहाँ अधीनता है वहां अधिकार नहीं। अधिकार भूलता है तब अधीन होते हो, तो कोई भी वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं होना। तो क्या कह रहे बाबा? अपने को सदा बाप के वर्षे के अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी और साथ साथ विश्व के राज्य अधिकारी अनुभव करते हो, बाप का वर्षा। क्या वर्ष है? सुख का अनुभव, शांति का अनुभव, और जैसे बाप आनंद का सागर है, वैसे आनंद के सागर में लहराते रहो। वरदान था ना? तो जो बाप के गुण वो हमारे गुण, उसका अनुभव और साथ साथ अनुभव कराना, वही महान आत्माएं हैं। तो बाप के वर्षे के अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अर्थात स्व पर राज्य अर्थात मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य, और अपनी देह पर राज्य, और अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य, और अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर राज्य, संस्कारों पर राज्य, स्वराज्य अधिकारी, हम अधिकारी आत्मा है। तो स्वराज्य का अनुभव यहाँ, और साथ साथ विश्व के राज्य का अधिकारी, इसका भी अनुभव, क्योंकि बाप का वर्षा ही है स्वराज्य और विश्व का राज्य। सुख, शांति, आनंद, पवित्रता वो तो है, पर स्वराज्य भी उसका वर्षा है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम आत्माएं इस देह की मालिक है। तो बाप के वर्षे के अधिकारी अर्थात स्वराज्य और विश्व के राज्य अधिकारी, यह विश्व आपके हस्तों पर आएगा। अभी तो अनेकों के हाथों में है, इसलिए विश्व भी हलचल में है, कभी यहां लुढ़कता है कभी वहां लुढ़कता है। जब आपके हाथ में आ जाएगा तो हलचल खत्म, एक रस रहेगा विश्व। याद आता है विश्व पर कितनी बार राज्य किया है, अनेक बार किया है, यह अनुभव होता है बुद्धि के कैमरा में, अपने राज्य का चित्र स्पष्ट आता है। जब आप कहता है तो जरूर होगा। ऐसा ही स्पष्ट है जैसे वर्तमान स्पष्ट है, क्योंकि कल ही की तो बात है, कल था कल आने वाला है, आज स्वराज्य कल विश्व का राज्य, आज कल की बात है ना। तो अधिकारी आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है, और जो व्यक्ति नशे में रहता है उसे कुछ याद नहीं रहता है, वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है, अलमस्त। तो किस नशे में रहना है कि हम अधिकारी आत्माएं हैं। किसके अधिकारी? स्वराज्य के अधिकारी। अब स्वराज्य का अधिकार यह अनुभव, इस संसार की कोई वस्तु व्यक्ति वैभव हमें आकर्षित न करे। नशे में जो व्यक्ति होता है उसे अतिरिक्त शक्ति आ जाती है। कुछ दिनों पहले था ना मुरली में, लड़ाई में भेजते हैं तो शराब पिलाते हैं, व्यक्ति मूर्छा में रहता है। पुराने जमाने में जब हाथियों को लड़ाई में भेजा जाता था तो उन्हें शराब पिलाई जाती थी और फिर भेजा जाता था। जब नशे में होता है व्यक्ति तो वो शक्ति आ जाती है उसमें, अल्पकाल की केवल, वो वास्तविक शक्ति तो नहीं होती है, परंतु थोड़े समय के लिए अनुभव तो जरूर होता है। यहाँ रूहानी नशे की बात चल रही है, हम बात कर रहे हैं संसार का लौकिक नशा। वासना भी एक नशा है, काम वासना में जो व्यक्ति रहता है उसमें भी अतिरिक्त शक्ति होती है क्षणिक। मृत्यु का भय वहां समाप्त तो होता है। उदाहरण है तुलसीदास का, वासना से भर जाता है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये बहुत बहादुर है, वो बहादुर नहीं है। तुलसीदास बहादुर नहीं है, बहादुर है वासना जो उसे खींच कर लेके जाती है अंधेरी रात में, जो मुर्दे को भी लकड़े का टुकड़ा समझकर तैर जाता है, छज्जे पर लटका हुआ सांप भी उसे जैसे रस्सी लगता है। रस्सी पर कौन चढ़ा? तुलसीदास नहीं चढ़ा, वासना चढ़ी, उसमें इतनी ताकत नहीं है। बाद में तो उसी जागृति आई, सांप को देखकर तो डर लगता है। कब की मुरली में? आजकल की मुरली में है ना, सांप से तो डरते हैं। संडे की मुरली में हाँ, उसमें असंभव जैसी कोई बात ही नहीं है। वासना इतनी प्रबल होती है, काम की वासना संसार की सबसे तीव्र वासना है, जो व्यक्ति को सत्संग से खींचकर वेश्यालय में ले जाती है। उसके आगे बाकी सारी वासनाएं गौन है। इतनी प्रबल और शक्तिशाली वासना है जो व्यक्ति को वह करने में मजबूर कर देती है जो वो नहीं कर सकता कभी, परंतु अल्पकाल की। धधकती अभी अग्नि पर चल सकता है काम से आपूरित व्यक्ति, जलते हुए मकान में घुस जाएगा, इतनी तीव्रता होती है उसमें। इसके लिए उसको जीतना असंभव माना गया है संसार में। जिसने जिसने उसको जीतने की कोशिश की वो गिरा। तो जो नशा है वो भी एक अल्पकाल का, अंधी होती है वासना, कुछ नहीं दिखता उसे। बाबा बात कर रहे हैं सुहानी नशे की, वो है अल्पकाल का जिस्मानी नशा। विस्मृति की अवस्था है वो, मूर्छा की अवस्था है, जागरण नहीं है वो, जहर की तरह है वो। उससे जागते ही व्यक्ति अपने आप को फिर दुर्बल पाता है। अल्पकाल का एक नशा चढ़ता है, नशा उतरते ही वही स्मृतियां, वही दुख और वही दर्द सब कुछ वापस लौट आता है। क्षणिक भर उसे लगता है कि बहुत शक्तिशाली हो गया, परंतु उस नशे में भी संसार भूल जाता है, संसार का कुछ याद नहीं रहता। बाबा बात कर रहे, अधिकारी आत्माएं सदा रूहानी नशे में रहती है, ये पारलौकिक नशा है, और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है, परंतु यह नशा इतनी आसानी से नहीं छटता। उस समय तो चढ़ता है, परंतु क्योंकि उस समय जागरण की अवस्था होती है, जो व्यक्ति अब तक सोया है उसे जगाया है किसी ने, उसे होश आया है कि मैं अब तक सोया था और सब आगे बढ़ गए, वो पहला सोपान है वो। इसके लिए वो जागरण की अवस्था बहुत ज्यादा तीव्र होती है और धीरे धीरे कम होने लगती है। व्यक्ति को जब किसी पुरुष को किसी स्त्री से जब प्रेम होता है तो उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, पर जब उन दोनों की शादी हो जाती है तब ध्यान देना बंद हो जाता है। बाद में जो चीज नहीं मिली थी उसे पा लेने की तब धुंध थी, पर जो मिल जाती है उसका महत्व और उसके ऊपर ध्यान फिर कम हो जाता है। मनुष्य के मन के स्वभाव को समझना है, ये स्वभाव क्या है और कैसे कार्य करता है, स्वभाव के क्या सूत्र है, कहाँ हमारा ध्यान जाता है, कौन से वो केंद्र है। अभी यहाँ बैठे, अभी मुरली सुन रहे, अभी अभी इस कमरे को अगर आग लग जाए तो ध्यान आग की तरफ चला जाएगा, ये भी भूल जाएगा कि कुछ सुन भी रहे थे, और जो सुन रहे थे वो कोई परम सत्ता के महावाक्य थे। ध्यान यहाँ से वहां केंद्रित होता है, कहाँ ध्यान केंद्रित करना है, वो कौन से नए बिंदु है योग के, वो कौन से नए केंद्र है जहां हम अपने ध्यान को केंद्रित करें, इसको समझना है। तो बुद्धि जो यहां वहां और यहां वहां जाती है वो रुकेगी। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया अगर सहज भुलानी है तो यह नशा चाहिए। उसके लिए एक ही जगह बैठने की जरूरत नहीं, आज मुरली में कहा कहीं पर भी बैठो, पहाड़ पर बैठो, जंगल में बैठो, कुटिया में बैठो, घर पर बैठो, कहीं पर बैठे भी तुम ट्रांसफर हो सकते हो मनुष्य से देवता में। लक्ष्य है भुलाना, पर हम जिसे भुलाना चाहते हैं सारा ध्यान उधर ही रहता है, जिससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं दिन रात उसी का चिंतन है। एक भोगी में और एक गलत तपस्वी में ज्यादा अंतर नहीं है। भोगी का सारा ध्यान वासनाओं की तरफ है और विषय वस्तु की तरफ है, और जो एक तपस्वी है, परंतु गलत तपस्वी जो है उसका भी ध्यान सब उधर ही रहता है, ज्यादा अंतर नहीं है उन दोनों में। वो भी दिन रात यही सोचते रहता है कि उससे कैसे छूटू, उससे कैसे छूटू और उससे कैसे छूटू, और जितना ही वो सोचता है उसमें और ही आबद्ध होता है। ध्यान लगाना है किसी ऐसी वस्तु पे कि ये स्वतः छूट जाए, त्याग जो हो वो स्वतः हो जाए, सन्यास जो हो जाए वो कहने की दरकार नहीं कि मैं सन्यासी हूं, ये वाक्य से एक प्रतिध्वनि आती है, एक विरोध आता है, एक संघर्ष आ रहा है, एक लड़ाई जैसे दिख रही है कि ये संसार और मैं, ये संसार और मैं, वो ऐसे छूट जाए कि जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं है। फिर वो पत्नी बाजू में बैठी है तो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं है, पहले ध्यान उसी की तरफ था। इन सूक्ष्म बातों को समझना है कि हमारा जो तपस्या है, हमारी जो तपस्या है, हमारा जो वैराग है, हमारा जो वास्तविक स्वभाव क्या है, बस उसको ढूंढना है। अभी हम दमन कर रहे हैं बहुत सारी बातों को, मुरली में आया क्रोध नहीं करना है, तो लड़ाई हमारी क्रोध से उत्पन्न चालू होती है, परंतु क्रोध तो हमने भर रखा है तहखाने में, काम वासना को डाल रखा है उधर छिपा के, वो केवल अवसर की तलाश में है, अवसर मिला कि बाहर निकलेगी। हम एक बुलावे में है कि हम काम से मुक्त है, ट्रिगर्स मिलने दो उसे तीन चार, वो सब बाहर आएगा। लक्ष्य है जड़ से समाप्त करना, उसके लिए अपने स्वभाव को समझना पड़ेगा, अपने ध्यान के केंद्र को समझना पड़ेगा। ध्यान कहाँ कहाँ जाता है, जहां ध्यान जाता है वहां शक्ति जाती है। तो भोगी का ध्यान जहां जाता है, एक योगी का ध्यान वहां न जाए, उसके लिए योगी को अपने लक्ष्य को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा, तो नीचे की वस्तु स्वतः ही छूट जाएगी। इतना नशा चढ़ाना पड़ेगा अपने आप को किसी और दुनिया का, तो ये दुनिया भूलेगी। केवल बिना नशा चढ़ाए इस दुनिया को भूलने का प्रयत्न किया तो विक्षिप्तता उत्पन्न होगी, एक ऐसा पागलपन जिससे व्यक्ति छूट नहीं पाता है, जो संसार के समस्त भर संसार के सभी सन्यासियों की हालत है। किसी भी सन्यासी से मिलो और पूछो, अगर एकांत में बैठो तो वह सन्यासी केवल एक ही चर्चा करेंगे, काम से कैसे मुक्त हो, और कोई चर्चा नहीं है उनके पास। सब कुछ करते हुए वो अंदर बनी रहती है। तो बाबा जो सिखा रहे हैं, ये ऐसी ऊंची चीज को पकड़ लो कि नीचे वाली चीज स्वतः ही छूट जाए। अगर वो स्वतः नहीं छूट रही है तो कुछ गलत हो रहा है, अगर जबरदस्ती करनी पड़ रही है तो कुछ गलत हो रहा है। तो अधिकारी आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है, और नशा पुरानी दुनिया को भुला देता है, स्थूल नशा सब कुछ भुला देता है ना, वह है अल्पकाल का, यह है सदाकाल का। सदाकाल के लिए आत्मा पुरानी दुनिया को नहीं भूल पाती है, क्योंकि उसका नशा ही वैसा नहीं है। जब अधिकार का नशा रहता है तो नई दुनिया के आगे यह पुरानी दुनिया क्या लगती है, कुछ भी नहीं। पुरानी दुनिया को भूलना मुश्किल नहीं लगता, अधिकारी कभी अधीन नहीं होता, कोई भी बात के अधीन नहीं। जहां अधिकार है वहां अधीनता नहीं, और जहां अधीनता है वहां अधिकार नहीं। पुण्य आत्मा का लक्षण बताया तो बाबा ने चौथा, जो सकामी राजाएं थे उनके पास सत्ता थी, तुम्हारे पास सत्ता है माया जीत और प्रकृति जीत की, फिर भी काम नहीं करती है, क्योंकि मिसयूज करते हो। मिसयूज क्यों करते हो, क्योंकि अधिकारी है परंतु वशीभूत हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, व्यर्थ बोलना सुनना सारी बातें उसने बताई थी। तो अधिकार भूलता है तब अधीन हो जाते हैं। किसके अधीन, वस्तु व्यक्ति और संस्कार, तीन चीजें। व्यक्ति इतना नहीं, वस्तु इतना नहीं, सबसे ज्यादा अधीन किसके होती है आत्मा, अति सूक्ष्म जो है वो है संस्कार आदत। व्यक्ति के अधीनता से छूट जाएंगे शायद मोह समाप्त हो जाएगा, वस्तु की भी अधीनता समाप्त हो गई, आज है नहीं भी मिला तो भी चलेगा, परंतु संस्कारों का क्या, क्योंकि व्यक्ति और वस्तु तो बाहरी है, उसकी अधीनता से छूट सकते हैं, वो भी मुश्किल है, परंतु एक तपस्वी के लिए वो संभव है। परंतु संस्कारों की अधीनता से कैसे छूटे, संस्कार अर्थात आदत, और जो कहीं बाहर से नहीं आ रही है वो अंतर है, अंतर में है, अंतस में छिपी हुई है वो आदत है। और जिनका ख्याल जिनका अनुभव केवल हमें है, वो बहुत सारे संस्कार संकल्पों में ही है, पर वो संकल्पों में उठते ही नीचे गिराते हैं। व्यक्ति ब्रह्मचर्य के पालन तो करता है, परंतु जैसे ही अवसर मिलता है वासनाओं में उत्पन्न होती है, संस्कारों में संकल्पों में हलचल होती है, और व्यक्ति नीचे गिरता है। फिर पश्चाताप, पश्चाताप में भी दो कैटेगरी है, पश्चाताप परिवर्तन वाला, पश्चाताप बिना परिवर्तन वाला। संडे की मुरली में कहा है बाबा ने, तो संस्कारों की अधीनता से मुक्त होने की क्या विधि है, आदतों से कैसे छूटे। एक आदत है जो लंबे समय से चल रही है, हमें पता है हमें उसे छूटना है, परंतु हम छूट नहीं पा रहे, सारी मुरलियों का अध्ययन कर लिया, रोज की साकार मुरली का अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया, चर्चा की, याद रखी, परंतु संस्कार वही बना के बना है, उसे वो स्पर्श नहीं कर रहा है। जागृति की कमी है सबसे पहली बात। किसी को नहीं देखती तो ये जागृति भी कैसे लाए? जागृति धक्के के साथ आती है, थोड़ा धक्का लगना चाहिए। दोनों चीजों पर अभ्यास करना पड़ेगा, जितना हो सके सब तरफ से हमको अपने जितने शस्त्र हमारे पास है, शत्रु बहुत शक्तिशाली है, वो विश्व विजयी है, उससे हमारा युद्ध है। हम पहले शत्रु को समझना पड़ेगा, वो किस रीति से कार्य करता है, ये संस्कार कब कब आता है। संस्कार यदि शत्रु है तो ये संस्कार का उदय कब होता है, कौन सी परिस्थितियों में इसका आगमन होता है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसका रूप है, अब तक उसने कितने रूप बदले हैं, और ये संस्कार कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, बाहर तो केवल ट्रिगर है। कल किसी ने मुझे मेल एक भेजा, उसमें था एक टीचर अपने स्टूडेंट को पूछता है, अगर संतरे को हाथ में पकड़ा जाए और निचोड़ा जाए तो किसका जूस निकलेगा, कौन सा रस निकलेगा? वो कहता है संतरे का। वो कहता है क्यों, आम का नहीं निकल सकता? वो कहता है नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो वो कहता है क्यों, मौसंबी का नहीं निकल सकता है? बोलते कैसे निकलेगा, जो अंदर है वही तो बाहर निकलेगा। अगर अंदर घृणा है, अंदर काम है, अंदर क्रोध है, अंदर लोभ भरा है, बाहर से चाहे कुछ भी हो रहा है, हम कहते हैं ये आया तो ये निकला, परंतु इसका मतलब वो अंदर था
तो निकला, अगर होता ही नहीं तो कहां से निकलता, था इसलिए निकला।
वो पराजित करने की, हमारा उनके साथ एक शत्रु भाव है। सबसे पहले तो ये करना है कि ये संस्कार मेरा है, ये आदत मेरी है, इसकी स्वीकृति, हम उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे। 10 साल से आदत चल रही है परंतु हम उसको झुठला रहे हैं। सबसे पहले स्वीकृति कि ये मुझ में है, यह जागृति ही उससे मुक्त कर देगी, केवल यह जागृति, परंतु संपूर्ण जागृति, संपूर्ण होश। हम अब तक उसको संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है, हमने ये स्वीकार करना बड़ा दुखद लगता है कि मुझ में क्रोध है, कोई नहीं कहेगा, परंतु अवसर की तलाश में वो है और वो निकलता है बाहर, चाहे कारण कुछ भी हो, वो निकलेगा। सबसे ज्यादा तो कल के आज की इसमें है ना, निकल था ना, तुम्हें सब कुछ सहन करना है। निंदा, जब कोई हमारी निंदा करता है तब क्रोध उत्पन्न होता है, इसका मतलब क्रोध वहां था पहले से, हम उससे अनभिज्ञ थे, वो है वहां, वो तो बाहर की कंडीशन, बाहर से कोई निचोड़ रहा है, पर निकल वही रहा है जो अंदर था। हमें ये देखना है कि अंदर क्या क्या है, तहखाने में, बेसमेंट में क्या क्या है, एक दूसरी स्वीकृति कि ये है, और उस स्वीकृति का संपूर्ण जागरण, फिर धीरे धीरे आत्मा उससे स्वतः ही मुक्त हो जाती है। तब तक नहीं, संस्कारों से मुक्त होना, संस्कारों के अधीन न होना, इसके लिए कुछ नए बिंदुओं के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। हमारे पास है तो, परंतु इतना ध्यान नहीं है उस संस्कार की तरफ, हमें पता है वो गलत है, परंतु हमने स्वीकार ही नहीं किया है कि वो हम में है। पहले उसकी स्वीकृति चाहिए, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है उससे मुक्ति, और वो मुक्ति ऐसी होगी कि सदाकाल की होगी, फिर उसका बार बार आने का कोई चांस नहीं। फिर माताओं को थोड़ा बहुत मोह आता है, क्यों? मोह का संस्कार है परंतु कोई स्वीकार नहीं करता, उसे दूसरे दूसरे शब्दों का आभूषण देते हैं, प्रेम, सेवा, रहम, केयर, परंतु वो मोह ही है, ये स्वीकृति। काम को कोई ये नहीं कहता कि मुझ में काम वासना है, ऐसा कोई नहीं कहता। योगी बनने के विरुद्ध में लगता है वो, परंतु वो है वहां, उसकी स्वीकृति और फिर उससे मुक्ति होगी। अभी भी निगाहें चलायमान होती है देह को देखकर, देह को देखने की इच्छा भी है, क्या है इस देह में, पता है उसमें क्या है, फिर भी आदत सी पड़ी है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है, साल में एक दो बार आता है, नहीं, जब कोई ज्यादा बीमार होता है तो मोह आता है, यह है ट्रिगर उसका। हम तो कहते हैं हम तो नष्ट मोह है, है ही नहीं मोह, अनुभव ही नहीं है मोह का 5 साल में, परंतु हमें बीमारी आई तो नहीं, हमारा जो अति प्रिय है उसको जब बीमारी आती है बार बार उसकी तरफ ध्यान जाता है, फिर वहां साक्षी नहीं हो सकते हम, वहां फिर पता चलता है। मोह की परीक्षा तब आती है जब कोई निकट व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसे कुछ होता है, तो बाबा एक दो बारी कह रहे हैं साल में, तब मोह आता है जब कोई बीमार होता है। पांडवों को क्या आता है, क्रोध नहीं आता है, रोग आता है, बाप मिला सब कुछ मिला, तो यह हद की बातें कुछ भी नहीं लगती, छोड़ना नहीं पड़ता लेकिन स्वतः ही छूट जाती है। बाबा जो बार बार कह रहा है मेहनत बाप देख नहीं सकते, आज तो मुरली में कहा आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें जरा भी मुश्किल का काम नहीं है, जरा भी मेहनत नहीं है, याद की यात्रा कोई कड़वी दवाई नहीं है जो मैं तुमको दे रहा हूं, साकार महावाक्य आज के, ये कोई कड़वी दवाई नहीं है, बाप बच्चों को कड़वी दवाई देगा, बाप जरा भी तकलीफ नहीं देते, याद की यात्रा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें जरा भी तकलीफ नहीं। तो बाबा चाहता है कि ये विकार स्वतः ही छूट जाए, विकारों की संपूर्ण समझ चाहिए, क्या किस रीति से ये कार्य करते हैं, क्या इनकी कार्य प्रणाली है, क्या योजनाएं बनाकर युद्ध करते हैं, कौन से षड्यंत्र रचते हैं कि जिसमें हम अनायास ही फंस जाते हैं और फंसने के बाद पता ही नहीं चलता हम फंस गए। 3 स्टेजेस बताई है संडे की मुरली में पापा ने, पहली है तख्त नशीन, यह तख्त इतना प्योर है इसमें केवल प्योर आत्मा ही बैठ सकती है, ये फर्स्ट। सेकंड स्टेज महसूसता की स्टेज, तीसरी स्टेज है पश्चाताप की स्टेज। महसूसता की स्टेज जो है उसमें भी 3 स्टेजेस है, कार्य करने से पहले महसूसता, कार्य करते समय महसूसता, कार्य के बाद महसूसता। महसूसता किसकी, व्यर्थ की, व्यर्थ हो गया ये, इससे भी पार जाना है। पश्चाताप तो विकर्मों से के लिए पश्चाताप, उसकी भी 2 स्टेजेस, एक पश्चाताप और फिर परिवर्तन, एक पश्चाताप और कोई परिवर्तन नहीं। तो यहां बाबा चाहते हैं कि विकार ऐसे छूट जाए जैसे तुमने बाहर का खाना ऐसे छोड़ दिया कि अभी उसका कोई संकल्प ही नहीं है, क्यों ऐसे हो गया, और विकारों का ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जो छोड़ते हैं और फिर आता है, छोड़ते और फिर आता है। खाने का तो जैसे ज्ञान में आए और एक बार जो छोड़ दिया आज तक खाया ही नहीं कभी, इच्छा ही नहीं हुई क्योंकि वो स्थूल है, ये सूक्ष्म है, परंतु जो सिद्धांत तो वहां लागू हुए हैं उन्हीं सिद्धांतों को यहां लागू करना है। फिर क्यों ऐसा हो गया, क्या ऐसा प्रकाश, कौन सी वो रोशनी बिजली बुद्धि में आ गई कि वो एकदम से छूट गया, और ये नहीं छूट रहा, उतना ही प्रकाश और उतनी ही बिजली और उतना ही रोशनी इस बात के लिए लानी पड़ेगी, उतनी ही जागरूकता की आवश्यकता है तो ही वो छूटेंगे, नहीं तो नहीं। यह तो हद की बातें कुछ भी नहीं लगती, छोड़ना नहीं पड़ता लेकिन स्वतः ही छूट जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, रंग बिरंगी वैरायटी फूलों का गुलदस्ता अच्छा है, लेकिन इस समय सब कहाँ की हो, इस समय मधुबन निवासी हो या अपने अपने स्थान याद आते हैं, इस समय सब एक हो। मधुबन निवासी बनने में मजा आता है ना, मजा आता है तो क्या, तो क्यों जाते हो, कहो सेवा के लिए जाते, मधुबन प्यारा है लेकिन सेवा भी प्यारी है, तो कहाँ भी रहते यह स्मृति में सदा रहे कि सेवा अर्थ है, हिसाब किताब किताब के अर्थ नहीं, सेवा अर्थ, ब्राह्मण अर्थात सेवादारी, सेवा में मजा आता है ना, घर समझेंगे तो बंधन है और सेवा स्थान समझेंगे तो खुशी है ना, जा भी रहे है तो सेवा अर्थ जा रहे, हिसाब किताब अर्थ नहीं जा रहे। तो यहाँ पे बाबा ने क्या कहा, मधुबन में रहना और यहाँ से जब जाते हो तो किस लिए जा रहे हो, ये नहीं समझो कि हिसाब किताब चुकतु है उधर करने, सेवा अर्थ जा रहे, इतनी अच्छी बात है, जा भी रहे तो किस लिए, सेवा अर्थ जा रहे। तो बाबा ने क्या क्या कहा, यहाँ पर तीन बातें कही, सबसे पहले तो हम सब कौन आत्माएं हैं, अधिकारी आत्माएं हैं, वर्षा कौन सा मिला है, स्वराज्य का वर्षा मिला है, स्वराज्य अर्थात हम अपने मालिक हो, अपने देह के मालिक और अपनी बुद्धि संस्कार और मन के मालिक, संकल्पों के मालिक, विचारों के मालिक, भावनाओं के मालिक, इमोशंस के मालिक, अध्यात्म के मार्ग में अति संवेदनशील होना एक सबसे बड़ा विघ्न है, संसार के हिसाब से अति भावुकता बहुत अच्छा गुण है, दुखों को देखकर रोना आ जाए बहुत अच्छा गुण माना गया है, परंतु वैराग का जो मार्ग है उसमें वो एक बाधा है, हमें तुम्हें यहाँ तो पत्थर दिल बनना है, यहाँ तो धधकती हुई अग्नि पर चलना है, यहाँ तो सब कुछ सहन करना है, जो कुछ सोचा भी नहीं था वो सब कुछ यहाँ होगा। योगी के लिए सबसे बड़ा विघ्न है भावुकता इनिशियल स्टेजेस में, बाकी रहम दिल जो विश्व कल्याणकारी है वो तो रहम दिल होता है, परंतु विश्व कल्याणकारी बनने की जो सीढ़ी है उसमें सबसे पहले तो संसार से वैराग चाहिए, जिस विश्व का कल्याण करना है उसी के प्रति पहले घृणा चाहिए, जो व्यक्ति इस संसार में फंसा हुआ है और मोह के बंधन में है वो क्या विश्व कल्याणकारी बनेगा, उसे तो सबसे पहले संसार के प्रति घृणा नफरत भाव चाहिए, किस लिए, क्योंकि उसे विश्व का कल्याण करना है, उल्टे सिद्धांत है यहाँ पर, जो व्यक्ति संसार और अपनी पत्नी और अपने बच्चों में फंसा है वो विश्व कल्याणकारी नहीं हो सकता है, उन्हें तो पहले उनसे अपनी रगों को काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, इस वैराग्य पथ पर चलना पड़ेगा, तब कहीं वो जाकर विश्व कल्याणकारी और राम दिल बनेगा। अगर व्यक्ति भावुक है, इमोशंस के बंधनों में है, जज्बातों को अभी तक जीत नहीं पाया है, वो कभी यहाँ आगे नहीं बढ़ सकता है, सुनने को देखने को अच्छा लगता है परंतु क्षणिक है, वो परिस्थितियां बदलती हुई है, क्योंकि परिस्थितियां विकराल है, क्योंकि उसके सामने भावुक व्यक्ति टिक नहीं सकता है, अपने ही इमोशंस को जीतना पड़ेगा, अपनी ही भावुकता से परे जाना पड़ेगा, अतिक्रमण करना पड़ेगा इस भावुकता का, तो इस मार्ग पर चला जा सकता है, ये साधा मार्ग नहीं है, कांटे ही कांटे बीचे है यहाँ पर, संसार में भी कांटे हैं, दो मार्ग है, एक संसार का मार्ग है, एक अध्यात्म का मार्ग, संसार के मार्ग में भी आग ही आग है, इधर भी आग ही आग है, फर्क केवल इतना है कि उस मार्ग पर जब चलते हो तो अंत में राख रह जाती है, जलते 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 संसारी व्यक्ति राख बन जाता है, अध्यात्म के मार्ग में भी कांटे है, अध्यात्म के मार्ग में भी आग है, जलते 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 व्यक्ति एक दिन हीरा बनता है, पर जो असंख्य आत्माओं को प्रकाशित करता है, जलना दोनों तरफ है, चुन लो का किस ओर जलना है, पूर्वी बहन किधर जलना है, इधर या उधर, जलना दोनों तरफ है, पर ऐसा नहीं कि इधर आ गए तो जलेंगे नहीं, यहाँ तो शायद जास्ती है, वो तो फिर भी कम है, एक सशक्त व्यक्ति ही लोह पुरुष, आयरन मैन, लोह पुरुष बनना पड़ेगा, लोह पुरुष जिसके स्नायु लोह के है, आंसुओं से पार निकलना पड़ेगा तो हो सकता है, तपाना पड़ेगा, जितनी ज्यादा जितना ज्यादा संघर्ष उतना व्यक्ति शक्तिशाली, आज तक इस संसार में इस इतिहास में अगर देखो तो जो भी सम्राट बने हैं, चाहे वो अशोक है, चाहे वो चंद्रगुप्त है, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान को ले लो, जितना संघर्ष इनके जीवन में और किसी के जीवन में नहीं है, एक पदाति सैनिक को कोई संघर्ष नहीं है, एक घोड़सवार को कोई ज्यादा संघर्ष नहीं है, पर जिसे सम्राट बनने का लक्ष्य है उसे उतनी ही कीमत चुकानी पड़ेगी, जितना ऊंचा लक्ष्य उतनी ऊंची कीमत भी देनी पड़ेगी। इतनी सस्ती नहीं है विश्व की बादशाही। बाबा कहते हैं कि तुम दो आने का मटका लेते हो तो ठोक ठोक के देखते हो, मैं तुम्हें विश्व की बादशाही ऐसे दे दूं? ऐसी ऐसी परीक्षाएं आएगी, अग्निपथ है, अग्नि शिखा बनना पड़ेगा, जलना पड़ेगा,
कोई मुश्किल नहीं।
परंतु मुश्किल तो उनके लिए नहीं है जो नशे में है, पर वो नशे तक पहुंचने के लिए ज्ञान भी जरूरी है कि सब कुछ होगा, मित्र शत्रु बनेंगे, सब कुछ होगा, जो सोचा नहीं था वो सब कुछ होगा, और ये होना ही चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में संपूर्ण बना जाता है, सानुकूल परिस्थितियों में नहीं। जितनी परिस्थितियां हमारे विरोध में, उतने ही हमारा विवेक जागृत होगा, उतनी ही जागृति आएगी। ये धक्का चाहिए, उतना ही ज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जहां सब कुछ सरल है वहां कुछ नहीं होगा, व्यक्ति तो सोया पड़ा है। यहाँ तो पथ हर 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 कदम फूक फूक के रखना है। तो बाबा कह रहे अधिकारी, अधिकारी अर्थात स्वराज्य, और जो अधिकारी होता है वो नशे में होता है, जो नशे में होता है पुरानी दुनिया स्वतः ही भूल जाती है, उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जो अधिकारी होता है वो व्यक्ति वैभव वस्तु और किसी भी संस्कार के अधीन नहीं, संस्कारों की अधीनता से भी हमें मुक्त होना है। उसके पहले संस्कारों को खोजना पड़ेगा, हमें खोजी बनना है, एक अन्वेषण करना है, गोताखोर बनकर डूबना है और अपने ही किसी एक संस्कार को ढूंढना है जो 10 साल से हमें उबड़ने नहीं दे रहा है, जो मार्ग पर ऐसी बाधा बनकर खड़ा है कि बार बार गिराता है और हमें पता ही नहीं है कि वही वो संस्कार है। उसको ढूंढना और उसको जीतना, उसका अतिक्रमण करना और आगे बढ़ जाना। तो संस्कारों की अधीनता से मुक्त, मोह से मुक्त, क्रोध से मुक्त और रोग से मुक्त। और लास्ट में बाबा ने क्या कहा कि कहीं जाते हो तो ये समझो कि हिसाब किताबें करके नहीं जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? क्योंकि सेवार्थ जा रहे हो। जहां हम खड़े हैं वहां सेवा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बोल, वाइब्रेशन, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब में पवित्रता, उसका खड़ा रहना ही सेवा है। बाबा ने कहा है सफेद साड़ी धारण की हो, पहनी हुई हो, ब्रह्मा कुमारी खड़ी हो तो सेवा स्वतः ही होती रहेंगी। जटाएं खुली हो, साकार महावाक्य है, तुम राज ऋषि हो, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ।